तारा परी मान के व्यवहार से दुखी होकर माली काका की पत्नी के पास जा बैठी। वहां उसके आंसुओं से माली काका की पत्नी का श्राप समाप्त हो गया और तारा परी उस नंजिन को अपने साथ माली काका के घर ले गई। वहां पहुंचकर देखा कि माली काका का परिवार उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना रहा था, परंतु तारा परी और नंजिन ने उनकी पूरी योजना विफल कर दी। अपनी योजना बिगड़ती देख माली काका की बहू ने तारा परी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तारा परी अपना क्रोध नियंत्रित नहीं कर पाई और उसने माली काका की बहू को जोरदार तमाचा मार दिया। अपनी पत्नी को पीटता देख जब उसका पति तारा परी को मारने आया, तब तारा परी ने उसे भी एक जोरदार तमाचा मार दिया और माली काका का बेटा भी उस कमरे से बाहर जाकर गिर पड़ा। अपने बड़े भाई और भाभी को पीटते देख माली काका के छोटे बेटे ने तारा परी के सामने आने की हिम्मत नहीं की और वो और उसकी पत्नी डर के मारे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो गए। तब तारा परी बोली, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने माली काका का क्या हाल बना दिया है। छी, मुझे तो सोचकर ही घिन आती है तुम लोगों पर कि तुम लोग कितने घटिया और गिरे हुए हो। भला कोई इतना कैसे गिर सकता है। जब तक तुम लोगों को माली काका से अपना स्वार्थ दिखता रहा, तुम लोगों ने उन्हें अपने साथ रखा, रूखी सूखी रोटी दी और आज जब वे बीमार हो गए तो तुम लोगों के लिए वे घर का पुराना सामान बन गए जो अब किसी काम का नहीं रहा। छी। इतना कहकर तारा परी ने उन लोगों की ओर से घृणा से मुंह मोड़ लिया। तब हिम्मत करके माली काका की छोटी बहू बोली, आप कौन हैं और क्यों आई हैं यहाँ। उसके सवाल पर नंजिन, जो कुछ देर से माली काका का हाथ थामे बैठी थी और आंसुओं से अपने पति को देख रही थी, उठी और माली काका की बहू के सामने जा खड़ी हुई। माली काका की छोटी बहू ज्यादा देर नंजिन की ओर नहीं देख सकी, क्योंकि नंजिन के चेहरे पर एक अद्भुत सा प्रकाश था, एकदम चांद सा रोशन चेहरा। उसने अपनी नजरें झुका ली। तब नंजिन बोली, मैं कौन हूं आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी, पर कौन नहीं ये बताना जरूरी नहीं समझती। और हाँ, इनकी बात रही तो मैं बता दूं, आप लोगों को इन्हें लेकर किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें यहां लेने आई हूं। जैसे ही नंजिन ने ये कहा, वे चारों एक दूसरे को देखने लगे। माली काका की बड़ी बहू और बेटा भी थोड़ा अंदर आ गए और डरते डरते तारा परी से दूर हटकर खड़े हो गए। तब हिम्मत करके माली काका की बहू फिर बोली, यहां इन्हें यानी कि आप बाबूजी को लेने आई हैं। तब नंजिन बोली, हाँ, मैं तुम लोगों के बाबूजी को ही लेने के लिए यहां आई हूं। इतना कहकर वो माली काका के बेटों की ओर देखने लगी और उन्हें देखकर उन्हें उन बच्चों का बचपन याद आ गया। उन्होंने जल्दी ही पहचान लिया कि कौन सा बेटा बड़ा है और कौन सा छोटा, और अचानक उनके अंदर की ममता बाहर आ गई और वो माली काका के बड़े बेटे के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, तुम रमेश हो ना। और फिर छोटे बेटे की ओर देखते हुए बोली, और तुम सुरेश। एक अजनबी औरत से अपने नाम सुनकर वे दोनों भाई चौंक गए। तब उनमें से एक बोला, आप कौन हैं और आपको हमारे नाम कैसे पता, और आप बाबूजी को लेने क्यों आई हैं, और आखिर एक बीमार बूढ़े आदमी का आप क्या करोगी। जैसे ही उनके बेटे ने ये कहा, तारा परी का मन एक बार फिर क्रोध से भर गया। तब तारा परी उन दोनों की ओर गुस्से से देखते हुए कहने लगी, ये तुम इनसे पूछते हो कि ये कौन है। ये वे हैं जिन्होंने तुम जैसे अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। ये वे हैं जिन्होंने तुम जैसे अनाथ बेसहारा बच्चों को पाला पोसा था। ये वे हैं जिन्होंने तुम जैसे अनाथों को माँ का प्यार दिया था। ये सुनकर वे दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देखने लगे। तब माली काका का छोटा बेटा बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम, अनाथ और वो भी हम लोग। तब तारा परी बोली, हाँ अनाथ, तुम दोनों अनाथ हो, और काकी के कहने पर माली काका तुम दोनों को अनाथ आश्रम से गोद लेकर आए थे। जिन माली काका को तुम लोग आज उनके बूढ़े और बीमार हो जाने पर घर से बाहर निकालने के लिए बैठे हो ना, ये ही तुम दोनों को उनके कहने पर अनाथ आश्रम से गोद लेकर आए थे, समझे तुम दोनों। और जिन महान इंसान ने दो अनाथ बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं अनाथ बच्चों ने उन बेचारों को दो दिन से खाना तक नहीं दिया। शर्मानी चाहिए तुम लोगों को जो अपनी अपनी बददिमाग बीवियों की बातों में आकर इन महान इंसान को बेघर करने पर उतारू हो गए, जो महान इंसान तुम्हें सड़क से उठाकर लाए थे। अरे मैं तो कहती हूँ, तुम जैसे बच्चों को तो अनाथ आश्रम में ही छोड़ देना चाहिए था सड़ने के लिए। छी, कितने घटिया लोग हो तुम, तारा परी ने माली काका की बहुओं की ओर देखते हुए कहा। तारा परी का तो मन कर रहा था उन चारों को अपनी शक्ति से भस्म कर दे, अभी के अभी जला डाले। तभी नंजिन ने तारा परी से कहा, बेटा तुम शांत हो जाओ, इनके ऊपर चिल्लाकर अपनी शक्ति मत खत्म करो। और नंजिन ने कुछ इशारा किया और तारा परी उनका इशारा समझकर एक पानी से भरा लोटा ले आई। वे चारों, माली काका के बेटे और बहू, मूर्ति बनकर ये सब खामोशी से देख रहे थे। तभी नंजिन ने वो लोटा तारा परी के हाथ से ले लिया और उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी, और करीब 10 मिनट बाद उन्होंने वो लोटा तारा परी को दे दिया और बोली, जाओ बेटा, ये पानी अपने काका को पिला दो। तारा परी ने हां में सिर हिलाया और फिर उसने वो पढ़ा हुआ पानी माली काका को पिला दिया। और पानी पिलाते ही अचानक माली काका के अंदर एक बहुत ही तेज रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि जिसे कोई नहीं देख पाया और सबकी आंखें अपने आप बंद होती चली गईं। और देखते ही देखते माली काका एक बीमार बूढ़े से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान में बदल गए। आज की भाषा में कहा जाए तो एकदम हैंडसम, स्मार्ट, डैशिंग बन गए, जिन्हें कोई एक बार देखे तो अपना दिल हार जाए। उन चारों, माली काका की बहू और बेटों की आंखें हैरत से फटी जा रही थीं और वे उस खूबसूरत नौजवान आदमी को अपनी आंखें मसल मसल कर बार बार देख रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। और तभी माली काका, जो अब एक नौजवान थे, वे तारा परी के पास आए और उन्होंने तारा परी के सिर पर हाथ रखा और बोले, तारा बेटी, तुमने, तुम्हारे पवित्र आंसुओं ने मुझे मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी, मुझे लौटा दिया है। तुम्हारा एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और बेटी, मैं दुआ करता हूँ कि जिस मकसद के लिए तुम इस पृथ्वी पर आई हो वो जल्द से जल्द पूरा हो। ये तेरे इस मारी काका का आशीर्वाद है तुझे, मेरी बच्ची। इतना कहकर वे तारा परी के गले लग गए। तब माली काका ने अपनी पत्नी को एक नज़र देखा और बोले, बेगम, हमने तो सोचा था हम तुम्हें बिना देखे ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, पर शायद उस ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ गया जो मुझे तुमसे एक बार फिर मिलवा दिया। और इतना कहकर वो नंजन के भी गले लग गया और खुशी के मारे रोने लगा। और कुछ देर बाद माली काका ने अपने बेटे और बहू की ओर देखा और अपने बेटों के सिर पर हाथ रखकर कहने लगा, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों को क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वो ना करे जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। इतना कहकर माली काका ने उन लोगों के सिर पर से अपना हाथ हटा लिया और नंजन से बोले, चलो बेगम, यहाँ से कहीं और चलते हैं और अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं।
इतना कहकर माली काका ने एक बार फिर नंजन को गले लगा लिया और देखते ही देखते उन दोनों के अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी और अचानक से वे दोनों गायब हो गए। माली काका और नंजन में से निकल रही रोशनी पर उन चारों, माली काका के दोनों बेटों और बहू का ध्यान गया हुआ था। तभी इस बात का फायदा उठाकर तारा परी भी वहां से निकल गई और जैसे ही वो रोशनी चमकना बंद हुई तो माली काका और नंजन वहां से गायब हो चुके थे। उन दोनों को एक साथ गायब देखकर माली काका का परिवार सदमे में बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर अमन और मान ने पूरा बगीचा छान मारा था, लेकिन उन्हें तारापरी कहीं नहीं मिली। अमन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। उसे तारापरी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि आज सुबह ही तारा पर बिच्छू का हमला हुआ था और अब अचानक से यूं बगीचे से गायब होना, कहीं कुछ भी हो सकता था। अमन ने हर जगह तारापरी को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे नहीं मिली, जिसकी वजह से अमन बहुत ही बेचैन हो गया था। वहीं मान एकदम शांत था, मानो उसे तारापरी के गायब होने का कुछ खास असर ही ना हुआ हो। तभी अमन मान से बोला, आखिर मिस तारा कहाँ जा सकती हैं? जब मैंने उन्हें बरगद के पेड़ के पास बैठने के लिए कहा था तो वे कहाँ जा सकती हैं? और जब वे दोनों बुरी तरह से चारों ओर तारापरी को ढूंढकर थक गए तो निराश होकर अमन ने कहा, चलो। और आखिर में वे दोनों थककर बगीचे के पेड़ के पास जा बैठे और हाथ जोड़कर अपने दादा महाराज के सामने बैठकर बोलने लगे, हे दादा महाराज, हमारी मदद करो। और वो अभी कुछ और ही कहने वाला था कि तभी अचानक से उसे उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जल्दी से भागकर बाहर निकल आए और जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। और जैसे ही वे दोनों अपनी गाड़ी के पास गए तो वहां गाड़ी में तारापरी को बैठा हुआ देखकर वे हैरान रह गए।